रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो हरिरामा मुरु भवन में या पद समान कोय अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कहंत। सद्गुरु से ती विनती परब्रह्म सु प्रणाम अनंत कोटि संत राम दास निश दिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव दी जनत्रिकाल केवंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। पूजा का रहस्य। वैशाख सुदी अष्टमी सम्मत 1995 कर्णवास 7 मई 1938 मुख्य पूजा तो भगवान की यही है कि सबको नारायण रूप समझकर पूजा करना। मंदिर में जो पूजा होती है वो अर्चन भक्ति है। भगवान की पूजा मूर्ति में होती है, चित्र में होती है, पाषाण में होती है, मिट्टी में होती है और मानसिक होती है। मूर्ति तो पाषाण की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है और तांबे चांदी सबकी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। चित्र होता है वो केवल कागज का, कागज पर बना होता है। मानसिक होती है वो हमारे मन से हम कल्पना करते हैं, अलग अलग है। इनमें सब में उत्तम पूजा मानसिक पूजा है, क्योंकि और पूजा में और क्रिया तो होती है लेकिन मन कहीं और जगह भाग जाता है। मानसिक के अंदर मन ही भगवान का रूप बना होता है, इसलिए उत्तम मानसिक पूजा होती है। प्रत्येक भाई बहन को अपने घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए और मानसिक भी करनी चाहिए। मंदिरों में हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, केवल दर्शन ही कर पाते हैं, अतएव घर में ही इष्ट देव की पूजा करो। मानसिक और साक्षात दोनों ही करो, बहुत उत्तम चीज है। तीन बात हो तो कहना ही क्या है, मानसिक भी हो, साक्षात मूर्ति हो तथा उसको सब जगह देखा जाए। ध्यान से सुनिए, सब जगह कैसे देखते हैं, जो हमारे घर में रखे हुए ठाकुर जी हैं वो सब जगह किस भावना से देखा जाए। तो जैसे चंद्रमा आकाश में एक जगह रहता है परंतु उसका प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है, तो एक बार उस प्रतिबिंबित चंद्रमा को पानी में देखने के बाद पूरे तालाब में देख सकते हैं। आकाश में एक जगह चंद्रमा दिखता है, उस पर नजर रखे तो सब जगह वही वो दिखेगा। ऐसे ही हमारे इष्ट देव को हृदय में रखकर उस दृष्टि से सबके अंदर अपना नारायण स्वरूप देखे, इससे ऊंची कोई पूजा नहीं होती। एक मूर्ति पूजक था और एक मूर्ति पूजा नहीं करता था, वो मूर्ति पूजा को मानता ही नहीं था, सब केवल दिखावा और ढोंग मानता था कि कोई मूर्ति उर्ति नहीं होती। कोई भी आदमी यदि पूजा करता तो उसको जाकर के छेड़खानी करके कहता, क्यों पूजा करते हो, क्या होता है, सब ढोंग है, कोई पूजा नहीं होनी चाहिए, विरोध करता। भले आदमी देखते इससे कौन माथा लगा है, कोई तो चुप हो जाते, कोई उसको बताते ही नहीं, और कोई अपना वो बकता रहता, वो अपना करते रहते। पर वो तो मूर्ति पूजा का विरोध डट करके करता था। एक दिन उस गांव में बैरागी बाबा आए। बैरागी संत तो जहां कहीं भी मंदिर वगैरह या कोई जगह होती है वहां अपना सब साफ करके बैठ करके पानी वगैरह छिड़क करके जगह को पवित्र करके और ठाकुर जी की पूजा किया करते हैं। तो वो बैरागी साधु वहां आया, जहां कहीं जगह मिली बैठ गया पूजा करने। अब वो आदमी आया उसके पास, कहा ये तुम क्या करते हो। बैरागी बाबा ने कहा, पता नहीं है, मैं भगवान की पूजा करता हूं। काहे के भगवान है, ये कोई भगवान है, तुम्हारी मूर्खता है, इतने दिन तक तुमने पूजा किया, तुम्हारा क्या काम सिद्ध हुआ, भगवान तुम्हारे कहां काम आए, क्यों यहां ढोंग करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, भैया हम यदि तुमको कहें कि तुम पूजो हमारे समान, तब तुम ये प्रश्न करना। हम हमारा समय लगाते हैं, हम हमारी तरफ से कुछ भी करें, आपको क्या मतलब। हमको तो ये करने से लाभ ही लाभ होता है, नुकसान नहीं होता, इसलिए हमारे काम में बाधा मत डालो। वो अंग्रेजों का जमाना था, उस जगह का कलेक्टर था वो भी अंग्रेज था, अंग्रेज वगैरह कहां मूर्ति पूजते। जो ऐसे धर्म का काम करते थे अंग्रेज लोग तो उनका विरोध करते थे। वो जो नास्तिक आदमी था वो कलेक्टर के पास पहुंच गया, क्योंकि ऐसे आदमियों के ऐसे आदमियों से ही दोस्ती होती है। कलेक्टर से शिकायत की, कलेक्टर के मन में मंदिर आदि का विरोध तो था ही। कलेक्टर झट घोड़े पर चढ़ गया और बैरागी बाबा के पास आकर खड़ा हो गया, क्या करते हो। कहा प्रभु का सत्कार करता हूं। तुम्हारा सत्कार क्या प्रभु के पास पहुंचता है, ढोंग करते हो। उसने कहा हां पहुंचता है। अच्छा, हम यहां के कलेक्टर हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे हां भरने से हम हां नहीं मानते, क्या हमको दिखला सकते हो। यदि नहीं दिखला सकते तो चले जाओ, निकल जाओ यहां से, और यदि दिखला तो अभी दिखलाओ। उसने कहा बाबा मैं मेरी पूजा करता हूं, आपकी कलेक्ट्री में काम आता है, आपके राजकाज में कोई बाधा नहीं देता हूं, मेरी इच्छा है मैं पूजा करता हूं, फिर भी आप बार बार ये कहते हैं कि तुम्हारी पूजा भगवान के पास पहुंचती है क्या, दिखाओ तो दिखा दूंगा आपको, दिखा दूंगा कि ये पूजा भगवान का स्वरूप है, भगवान के पास पहुंचती है और इसे भगवान स्वीकार करते हैं। फालतू की बात मत करो, हमें तो विश्वास नहीं है। कहा कि हमको समय दो, हम आपके अंदर विश्वास पैदा कर देंगे। कितना समय चाहिए? एक माह की मोहलत देनी होगी। अच्छा दे दी, एक महीने में बता देना। बैरागी बाबा ने कहा ठीक है। अब वो बैरागी बाबा इधर उधर से लोगों से मिल मिला करके कलेक्टर साहब की फोटो लेकर के और उस कलेक्टर की एक फोटो बनवाई और एक तरफ रख दी और जूते लेकर रोज कलेक्टर की फोटो के ऊपर मारता और जो भी कोई उनसे मिलने आता, बाबा जी थे लोग तो मिलने आ भाई, क्या भाई हमसे कोई बात करे तो पहले दो जूता यहां मारो उसके बाद हमसे बात करो, ये महामूर्ख है इसलिए इसके जूता मारो। जूता मारे, कई भेदु लोग थे उनमें वो भी एक दिन आया और जाकर के साहब से कहा, कलेक्टर साहब से कि महाराज आपके पुतले को रोज जूता मारता है कलेक्टर साहब, हमसे देखा नहीं जाता है, हमारा चित्त दुखी होता है। कलेक्टर गुस्से में आ गया, अच्छा बिना कसूर हमारे पुतले को जूते मारता है, ठीक है मैं आज उसको जेल भेज दूंगा। कलेक्टर आया और कलेक्टर के सामने वो बाबा जूता मारने लगा। कलेक्टर ने कहा क्या करता है? बैरागी बाबा ने कहा कि ये अन्यायी है, ये न्याय नहीं करता है, ये सुनता नहीं है, ये झूठा निर्णय करता है, इसलिए इसको झूठा मारता हूं। तो तुमने इसके नीचे मेरा नाम कैसे लिख दिया? ये तो मेरा नाम है, मैं यहां का कलेक्टर हूं, ये मेरा नाम, और झूठा मारता है तू। देखो साहब ये आपकी चीज तो नहीं है, चीज तो मेरी है, मेरी वस्तु का मैं कुछ भी नाम रखूं उसको आप अपना मान करके दुखी होते हो तो होते हो, ये न्याय थोड़ा ही है। ये मेरी वस्तु है, मैं चाहे जो इसका नाम रखूं, मैं जूता मारूं फूल चढ़ाऊं, आपको क्या मतलब? नहीं नहीं तुम हमारी बेइज्जती करते हो, सकल सूरत हमसे मिलती है इस फोटो की, नाम मेरा लिख रखा है और मैं यहां का कलेक्टर, कि आप कलेक्टर हो ये थोड़ा ही है, तो ये मेरा ही तो स्वरूप है, मेरा ही तो चिन्ह है, बातें बनाते हो, भ्रम करते हो या भ्रम फैलाते हो और मारते हो, क्योंकि तुम जो कुछ ये व्यवहार करते हो ये हमारे हृदय में पहुंचता है, हमको कष्ट होता है, इसका ये व्यवहार बंद करो। बाबा जी ने उत्तर दिया, कलेक्टर साहब मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, जब मेरे द्वारा पूजा में रखे हुए भगवान उसका मैं कुछ भी नाम रखूं कुछ भी स्वरूप रखूं, अरे आपके चित्र पर जूता मारने से आपके हृदय में तकलीफ होती है, तो यहां मैं भगवान के सामने स्तुति करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, वो भगवान पर असर नहीं करेगी? ये तो आप ही के व्यवहार से सिद्ध हो गया। हमारी बात प्रभु तक पहुंचती है? कलेक्टर ने हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब हम प्रार्थना करते हैं, आप चाहे पूजा करो चाहे कुछ ही करो, पर मेरी तस्वीर की जूता मत मारो, मेरा अपमान होता है। इस प्रकार एक नास्तिक आदमी के हृदय में ही ये बात बैठ गई कि भगवान के स्वरूप का पूजन करने पर वो पूजा वहां पहुंचती है। तो अपने लोग तो सदा से ही आस्था रखने वाले हैं, साक्षात भगवान समझ करके उसकी पूजा करेंगे, वो पूजा भगवान तक पहुंच गई। जब आप तक ये खबर पहुंच गई तो प्रभु के पहुंचने में क्या बात है? बाबा जी ने कहा, आप तक ये खबर पहुंच गई तो प्रभु के पहुंचने में क्या बात है? नवदा भक्ति केवल पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान प्रकट होकर एक आदमी के समान खड़े होकर बातचीत करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान खाते भी हैं, उनका वचन है हमारे यहां आकर नहीं खाते, इसमें हमारा दोष है क्योंकि हमारे अंदर वैसा प्रेम नहीं है। भगवान कहते हैं कि जहां अतिशय प्रेम होता है मैं उस प्रेमी के यहां खाता हूं। बिना श्रद्धा प्रेम के तो भला एक साधारण आदमी भी किसी के घर जाकर भोजन नहीं लेता, फिर भगवान की तो बात ही क्या है। भगवान आते हैं, प्रेमी बुलाता है तो भगवान उस प्रेमी के साथ बैठते हैं, उसके साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं और खाते हैं। बिना बुलाए यदि भगवान आ भी जाए, उनकी चाहे कितनी फिर खुशामदी करो, पर भोजन खाना तो वो प्रेमी के यही करेंगे। चोरी करके भी खाते हैं भगवान, परंतु प्रेमी लोगों की यही चोरी की है। किसी नास्तिक के घर में घुस करके छोटे से बाल कन्हैया ने माखन नहीं खाया। प्रेमी लोगों के घरों में जाकर चुरा चुरा के माखन खाने में भगवान को बड़ा आनंद आया। महाभारत में दुर्वासा ऋषि एक बार दुर्योधन के यहां आ गए। दुर्योधन ने कहा कि हे ऋषिवर, आप इसी समय पांडवों के यहां जाओ, मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी कल्याण करो, उनको भी आशीर्वाद दो, पर जाना इसी समय जिस समय आप मेरे यहां आए हो, द्रौपदी वगैरह सब भोजन कर ले हुए तब जाओ। दुर्वासा गए, तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा को आया देखकर द्रौपदी घबरा गई। 10,000 शिष्य और हमारी बटलोई तो खाली हो गई, जाने क्या श्राप दे देंगे, आगे हम संकट में पड़े हुए हैं। आर्त होकर भगवान को पुकारने लगी, बस आगे आती कहने लगे, द्रौपदी द्रौपदी जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, इस भूख के पीछे तो आपको बुलाया है, हम तो खा पी चुके, दुर्वासा ऋषि भूखे आए, कुछ भी नहीं बचा है। द्रौपदी क्यों तुम मेरे से तमाशा करते हो, ये हंसी मजाक का समय नहीं है, मुझे देखो, मुझे जोर से भूख लगी है, जैसे कोई बच्चा छटपटाए ऐसे भगवान छटपटाने लगे। द्रौपदी ने कहा, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है, देखो कुछ तो होगा। तो पालक का एक पत्ता हांडी के चिपका रह गया। भगवान ने उसको यूं देखा, पात्र को एक पत्ता चिपका देखा, खा गए। खाती डकार ली, डकार लेती दुर्वासा का पेट भर गया। आप विचार करो, जो विश्वपति का पेट भर जाए तो फिर विश्व भूखा थोड़ा ही मरेगा। द्रौपदी खुश हो गई, कृष्ण तुमने मेरी लाज रख दी। आज तो उससे भी अधिक बात थी, सभा में जो लाज रखी उसमें तो सबकी सहानुभूति मेरी तरफ थी, सारा समाज मेरी तरफ था, लेकिन आज तो दुर्वासा ऋषि के पक्ष में सब हो जाते कि एक ऋषि आया उसको भूखा निकाल दिया और वो हमको जाने क्या श्राप देते। हे कृष्ण, तुम अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हो ये प्रेमी भी नहीं जानते। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ऐसी व्यवस्था करो, दुलाओ बुलाओ दुर्वासा को। सब भाई बुलाने गए। जब भगवान ने डकार ली, उस समय दुर्वासा के शिष्य संध्या कर रहे थे। संध्या करते करते उनका पेट भर गया। भूखे पेट में संध्या करने बैठे और डकार लेते पेट भर गया। यही हाल दुर्वासा का हुआ। दुर्वासा ने अपने शिष्यों से कहा, भाई देखो मैं तो तृप्त हुआ हुआ हूं, आप लोग जाओ, निमंत्रण आया है, भोजन करो। का हम भी तृप्त हैं, हम भी तृप्त हैं। सभी ने कह दिया कि हम तृप्त हैं। दुर्वासा को अम्बरीश की घटना याद आई। उन भाइयों ने कहा कि दुर्वासा जी भोजन तैयार है, भोजन करने पधारो। कहा कि देखो हम नहीं आएंगे। पधारो महाराज, बार बार पधारा, पधारो करने को भग गए वहां से। ये भीमसेन वगैरह कहीं उठा उठा के नहीं ले जाए, भग गए। भाई लोग वापिस आ गए, कृष्ण से कहा कि वो तो चले गए, भग गए। द्रौपदी ने कहा कि वो बाद में आ सकते हैं, फिर कल आ सकते हैं, फिर कभी आकर के ऐसा कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि ये चाल थी दुर्योधन की, तो फिर वो आएगा तो फिर मेरे को याद कर लेना, मैं कोई गया थोड़ा ही हूं, तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अब आप विचार करो, द्रौपदी ने भगवान को भोजन के लिए बुलाया थोड़ा ही था, वो तो दुखी होकर के याद करने लगी क्या करूं क्या करूं, पर वे तो आ ही गए और आकर के सीधा भोजन ही मांगते हैं। इतने प्रेमी भगवान भोजन मांगे और द्रौपदी कहे मेरे पास है नहीं। कितनी लज्जित हुई है द्रौपदी, कितनी शर्म आई है, अपने भगवान को मैं भोजन नहीं करा सकती, लज्जित हो गई। लेकिन भगवान ने उसको भी लज्जित होने से बचाया और दुर्वासा की आफत भी काटी। एक पत्ता खा गए, बस प्रेम का ये प्रभाव है। पत्रम पुष्पम, अब फूल की बात सुनो। गजेंद्र ने प्रेम से एक फूल दिया, भगवान ने सूंड में से वो फूल निकाला और खा गए। भगवान तो पत्ता फूल सब खा जाते हैं, अपने लोग तो न फूल खाते न पत्ता खाते, केवल फल खाते हैं, उसमें भी गुठली छिलका को निकालते हैं, लेकिन भगवान तो ये सब खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम चीज अलग ही है। गजेंद्र ने पुकारा कि महाराज ये तो फूल पूजा के लिए है। भगवान ने कहा मुझे इसमें मिठास का अनुभव होता है, खा गए, रक्षा कर दी। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। फल के लिए भी यही बात है, कौरव सभा में दूत बनकर गए। दुर्योधन ने कहा मेरे महल में पधारो और अतिथि सेवा को स्वीकार करो। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे महल में नहीं जाऊंगा। उसने पूछा क्यों, आप मेरा आतिथ्य क्यों नहीं स्वीकार करते? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा दुर्योधन, मनुष्य दो जगह ही भोजन कर सकता है, दो जगह की सेवा स्वीकार करता है। एक या तो जहां प्रेम होता है वहां, या आपत्ति होती है वहां। दुर्योधन से कहा कि सुनो दुर्योधन, मेरे कोई आफत तो है नहीं, कहीं भोजन मिलता नहीं ऐसी बात तो है नहीं, मेरे तो आफत नहीं है और तेरे हृदय में प्रेम नहीं है। आदमी दो जगह भोजन करता है, प्रेम होता है वहां भोजन किए हुए पर भोजन कर सकता है कि भी क्या करूं तुम नाराज हो जाओगे, और आपत्ति में तो मांग ही लेता है। तो आपत्ति तो मेरे पर है नहीं, प्रेम तेरे अंदर नहीं, अब बताओ तीसरा कोई रास्ता नहीं तो कहां जाओगे? कि जहां प्रेम होगा वहां जाएंगे। विदुर जी सभा में विदुर जी को नहीं कहा कि तुम्हारे घर जा रहे हैं, भगवान तो रवाना हो गए बिना बुलाए। विदुर जी के आ गए, विदुरानी स्नान कर रही थी, भगवान ने जाकर किवाड़ खटखटाया, मां मैं वासुदेव कृष्ण भूखा हूं, तुम्हारे यहां भोजन करने आया हूं, मां जल्दी किवाड़ खोलो। इतना सुनना था, विदुरानी तो पागल हो गई, सुधबुध खो गई। आई, किवाड़ खोला, भगवान को देखा, भगवान ने कहा अरे शरीर पर वस्त्र ही नहीं है, अपना पीतांबर डाल दिया, उसको पता ही नहीं है। विदुरानी केले के छिलके खिलाना चालू कर दिया, भगवान केले के छिलके बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी आए पीछे पीछे, आते ही ये रूप देख के बड़े नाराज हुए, अरे क्या खिला रही है, तुझे पता ही नहीं है, तेरा दिमाग काम करता ही नहीं है। विदुरानी को होश आया, कृष्ण भगवान के सामने रोने लगी और कहने लगी मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना, मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। विदुर जी ने कहा छोड़, जब तेरे से नहीं होता तो मैं खिलाता हूं, ला मुझे देख केड़ा। अब वो विदुर जी केड़ा लेकर छिलका तो फेंकने लगे और केले के बीच का भाग देने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं विदुर जी ये केले कोई और जाति के हैं क्या? क्यों, इनमें मिठास नहीं है, फीके हैं, खाने का मन नहीं करता है। अभी आप छिलके नहीं थे, क्या पता क्या खा रहा था, वो मीठे थे, खाने में बड़ा आनंद आ रहा था, आपको पता नहीं? कहा नहीं मुझे पता ही नहीं मैं क्या खा रहा हूं। कृष्ण तुम तो यहीं बैठे खा रहे हो ना, ये देखो। ना ना मैं तो उस समय शबरी के यहां चला गया, मेरी चित्तवृत्ति शबरी के यहां चली गई। जब विदुरानी का प्रेम देखा तो मुझे याद आया कि ऐसा ही प्रेम शबरी का था, वो मुझे बैर दे रही थी, मैं बैर खा रही थी, बैर खा रहा था, ठीक वैसा का वैसा मिठास मुझे यहां फल खाने में लगा, आपके फल तो मुझे फीके लगे। विदुर जी चुप हो गए। रंतिदेव के यहां चंडाल रूप से जल लिया। गीता में भगवान ने जो ये बातें कही, पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, तो भगवान अर्जुन को गीता सुनाते सुनाते इन भक्तों के पास पहुंच गए। और इस श्लोक को कहते कहते शायद भगवान उन लीलाओं के अंदर दौड़ गए होंगे। एक पुजारी भगवान की पूजा किया करता था, श्रद्धा प्रेम था, पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। एक दिन पुजारी जी अपने दोहिते से कहा कि मैं विवाह में जा रहा हूं, तो ठाकुर जी के भोग लगाकर भोजन कर लेना। बच्चे ने कहा ठीक है ऐसा कर लूंगा। पुजारी जी गए, बच्चे ने प्रेम से पूजा करके भोग रख दिया और आड़ दी कपड़ाई में आड़ दी। 10 मिनट के बाद देखा तो भोजन वैसा ही था। तो वो बच्चा बोला क्यों भोजन क्यों नहीं करते, क्या मेरे से रूस गए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मेरे पर क्यों नाराज हो। यदि आप नहीं खाओगे तो मैं आपके सामने मर जाऊंगा। फिर सोचा कि इनके सामने मर जाऊंगा तब तो ये भोजन अपवित्र हो जाएगा और मैंने मरने की बात कह दी, और भी गलत बात है, तो ऐसे शब्द बोलने ही नहीं चाहिए भोजन के समय। वो भोजन उठा के ले गया, दोबारा उसने भोजन बनाया, दूसरी बार बनाकर भोग लगाया, फिर वो आड़ लगाई। आड़ लगाई का मतलब पर्दा लगाया। फिर आड़ लगाई, कई देर तक हाथ जोड़कर खड़ा रहा, फिर आड़ हटाई, देखा झोंका त्यों भोजन है कुछ नहीं खाया, तो वो खींच करके बोलने लगा मैंने पवित्रता से बनाया है फिर भी तुम नहीं खाते हो, जवाब दो मुझे। कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो बोला कि अरे ठाकुर मुझे ऐसा विश्वास होता कि तू हमारे बनाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो मैं इतनी कठिनता क्यों भोगता, क्यों मैं दो दो बार माथा फोड़ी करता, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था। मैंने देखा वो भोजन करेंगे क्योंकि तुम्हारे भोजन करने से मेरे को भोजन मिलेगा, अब तू नहीं करेगा मुझे भूखा रहना पड़ेगा और 3 दिन तक मेरे नाना जी आएंगे नहीं। देखो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं करो भोजन करो, मैं भूखा मर रहा हूं, तुम्हारे तो क्या पता भूखा मरने का स्वभाव है, तुम तो 3 युगों तक भी भूखे रह सकते हो, मैं कैसे रहूंगा, मैं तो मेरा तो मरण हो जाएगा। जीमते हो कि नहीं जीमते हो, भोजन करो। कुछ नहीं आवाज आए, वैसे की वैसी बात। बच्चे को बड़ा क्रोध आया, वो वहां से भगा, भग करके कटार लेकर आया और कहा कि देखो अब भोजन करो नहीं तो मैं मरता हूं, ठाकुर जी जल्दी आओ नहीं मैं मरता हूं। हाथ ऊंचा किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले कि भाई ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं कोई प्रकट होकर के खाऊं ये जरूरी नहीं है, तुमने मेरे सामने प्रेम से रख दिया तो मैं तुम्हारी प्रेम की भावना को खाया हूं, वस्तु को खाऊं न खाऊं उससे क्या मतलब है, वस्तु तो संसार वाले खाते ही है, वस्तु के खाने की कीमत नहीं है, तुम जो प्रेम से मुझे खिलाते हो उस प्रेम को खाता हूं। तुम्हारा जो जो प्रेम बढ़ा त्यों त्यों मेरे अंदर खाने की इच्छा हुई। तीन दिन तक भगवान ने रोज प्रकट होकर के भोजन किया। चौथे दिन पुजारी जी आ गए। पुजारी जी ने कहा कि बेटा ठाकुर जी के भोग लगा करके भोजन किया ना, तो वो कहा कि देखो पहले दिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने दो बार भोजन बनाया, सारे दिन मनौतियां करता फिरा, खूब हाथाजोड़ी की, लेकिन माने नहीं। तब अंत में मुझे क्रोध आ गया, मैं कटारी लेकर आया, मैं अपने आप को मारने पर जब जिद करने लगा तब वो चुपचाप आए, आराम से भोजन किया और तीन दिन तक बराबर भोजन किया। पुजारी बोला, अरे मूर्ख, ऐसा कभी होता है क्या? वे तो तांबे के बने हुए हैं, वो कोई भोजन करेंगे, दंभ करता है, कपट करता है, इधर उधर की सुनी हुई बातें सुनाता है, सच बात तो है नहीं। बोला कि सच्ची बात बताऊं, एक शेर रोटी, एक शेर आटे की रोटी बनाता था और जैसे मेरे से बनती कच्ची पक्की जैसी भी वो ले जाकर मैं वहां रख देता और वो पूरा का पूरा खा जाते। पुजारी ने कहा मैं नहीं मानता। पुजारी ने कहा चलो हम बनाते हैं, और पुजारी ने भोजन बनाया एक शेर आटे का। न तो भगवान आए न भगवान खाए। पुजारी ने कहा कि क्यों झूठ बोलता है रे छोकरे? जाग जाकर के बोला कि नहीं पाखंड नहीं करते, पूछो इनसे खाते थे कि नहीं, ये आपकी शर्म करते हैं तो आप जानो, मेरे से भी ऐसे शर्म किया, बाद में शर्म नहीं की। नाना बोलने लगा पाखंड करता है। फिर कहा नहीं मैं पाखंड क्यों करूं, मुझे पाखंड से क्या मतलब? पुजारी ने भगवान की ओर देखा, कहा कि इस बच्चे की बनाई हुई बेडोल रोटियों को तू खा गया, मैंने कितनी सुंदर अच्छी अच्छी रोटी बनाई है नहीं खाता है, बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती होती है, क्या करूं? पुजारी भी झट से छुरी लाया, प्रकट हो गए भगवान। पुजारी को आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा देखा देखी नहीं करनी चाहिए, तुम मरो नहीं इसलिए मैं आ गया हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, साधना में किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, ये कटार लाया तो मैं भी कटार ले आऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुजारी जी आपने तो मुझे धातु का रूप मान लिया, मेरे अंदर चेतना तो देखी नहीं, ऐसे आइंदे कभी मत करना, जाकी रही भावना जैसी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो सारे संसार को परमात्मा का स्वरूप समझकर पूजा करने को भगवान की पूजा वास्तविक पूजा कहते हैं। सारा संसार परमात्मा का स्वरूप, सबकी आत्मा, ये आत्मा ही तो परमात्मा है, उनकी पूजा से ही भगवान व्यक्त होते हैं। सारे संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए सब में भगवान है, सर्वव्यापी है। परमात्मा की पूजा करे करके परम गति को प्राप्त हो जाता है, ये भगवान की पूजा है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित है। हे गुड़ाकेश अर्जुन, मैं ही सबके अंदर आत्मा रूप से रहता हूं, सर्वव्यापक हूं, ऐसा समझता है और सबकी सेवा करता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य मेरे भाव से जिसकी पूजा करता है वह मैं ही भोगता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अपने घर में भी कोई भी भोजन के लिए आवे तो उसे भगवान का स्वरूप समझ करके भोजन कराओ, आपको बड़ा आनंद बड़ी शांति मिलेगी। तिरस्कार पूर्वक भोजन कराओ, आपके चित्त में जलन रहेगी। भोजन तो वही है लेकिन भावना से आपको कितना आनंद का अनुभव होगा, भगवान ने भोजन किया है। और जलते हुए कलेजे से भोजन कराओगे, भोजन तो आपका उतना ही खर्च हुआ है लेकिन आपके मन में बड़ी अशांति और जलन रहेगी। इसलिए अपने घर में आए हुए को अतिथि देवो भावो, अतिथि परमात्मा का रूप होता है। मातृ देवो भावो, पितृ देवो भावो, अतिथि देवो भावो। ऐसा करने से अतिथि में भगवान प्रकट होकर मिल सकते हैं। बालक को माता पिता की सेवा से लाभ होता है। माता पिता को नारायण मानकर जो उनकी सेवा करता है ऐसे बालकों की साक्षात मुक्ति पीछे रहती है। अब सेठ जी लिखते हैं, हमारे पिताजी जैसी सेवा बड़ों की करते थे वैसी हमसे नहीं बन पाती है। आगे क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं। मेरे पिताजी मेरी दादी को परिक्रमा देकर प्रणाम करते थे। ऐसा आदर बड़े बूढ़ों का जिस घर में होता है वो घर घर नहीं है, वो साक्षात मंदिर है। ये बात शास्त्रों की है। इस प्रकार संसार में जितने लोग हैं उनको नारायण समझ करके प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, शीघ्र कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण।
नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण सियावर रामचंद्र की
जय।
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय।
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
जय जय जय।